दूसरा राजा अध्याय 9। हम देख रहे हैं कि एलिशा सजीव चरित्र था। इस अध्ययन में हम उसकी सेवकाई के अंत में आ रहे हैं। वो उत्तरी राज्य इसराइल का एक नबी था। एलिशा ने एक जवान नबी को इज़राइल जाने की आज्ञा दी और कहा, हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर जाना। वहां पहुंचकर येहू को, जो इसराइल की सेना का प्रधान था, अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाकर तेल से उसका अभिषेक करना कि वो इसराइल का राजा हो। तब जितनी शीघ्र हो सके वहां से भाग जाना। ये जवान नबी इज़राइल गया। वहां येहू बहुत से अधिकारियों के साथ बैठा था और नबी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। येहू ने पूछा, हम में से किसके लिए? नबी ने उससे कहा, तेरे लिए, तू दूसरे कमरे में आ। अतः वो दूसरे कमरे में गया और नबी ने कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इसराइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। ये आहाब और अहजया के उत्तराधिकारी के स्थान को ग्रहण करने के बारे में था, इसलिए उसने येहू पर तेल डाला और वहां से निकल गया। तब येहू उन अधिकारियों के पास बाहर आया। उन्होंने कहा, वो मनुष्य यहां क्या करने आया था? वो देखने में अजीब लग रहा था। उसने तुम्हें क्या कहा? और येहू ने कहा, उसने तेल से मेरा अभिषेक किया और कहा कि मैं इसराइल का राजा बनूंगा। तब सभी पुरुषों ने अपने अपने कोट उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर ही बिछाकर दोनों ओर लाइन लगाई तथा येहू को सबसे ऊपर खड़ा किया और तुरी बजाकर कहा, येहू राजा जीवित रहे। उसने कहा, सुनो, तुम सब मनुष्यों इस बात के बारे में गंभीर हो, कोई भी राजा को जाकर उसे साचेत ना करे कि यहां क्या हुआ है। तब येहू और वे लोग योराम के पास गए, जो आहाब का उत्तराधिकारी और यहोशोपात का पुत्र था। योराम उस समय अपने उन घावों से ठीक हो रहा था जो उसे आराम के विरुद्ध युद्ध में लगे थे, और उस समय वो रामोत के गिलाद में था। उन दिनों में शहर पना हुआ करती थी और उनके ऊपर सुरक्षा के लिए मचान होते थे, जिसमें पहरेदार बैठा करते थे, जो दूर से आने जाने वाले को देखा करते थे। पहरेदार नीचे आकर कहने लगा, कुछ रथ शहर की ओर आ रहे हैं, मैं दूर धूल उड़ती देख रहा हूं। अतः उन्होंने राजा के पास संदेश वाहक भेजा। राजा योराम ने कहा, वहां जाकर उनसे पूछो, क्या वे शांति से आते हैं? इसलिए संदेश वाहक येहू के पास आकर पूछने लगा, क्या तुम शांति से आते हो? येहू ने कहा, तुझे शांति से क्या लेना, मेरे पीछे हो ले। राजा ने कहा, दूसरा संदेश वाहक भेजकर पता लगाओ कि क्या वे शांति से आते हैं। जो मनुष्य मचान पर था उसने संदेश भेजा कि संदेश वाहक वापस नहीं लौटा है, वो उसके पास गया परंतु लौट कर नहीं आ रहा है। तब पहरुए ने कहा, अध्याय 9 पद 20, हांकना निमशी के पोते येहू का सा है, वो तो बौढ़े की ना ही हांकता है। मेरी पत्नी चाहती थी कि मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट पर येहू का चित्र बना हो। मैं इसे भला विचार नहीं मानता हूं। अब दूसरा संदेश वाहक येहू के पास पहुंचा और पूछा, क्या तुम शांति से आते हो? उसने कहा, तुझे शांति से क्या लेना, तू मेरे पीछे चल। इसलिए योराम खुद अहजया के साथ अपने रथ में उसे मिलने आया, क्योंकि वो बीमार था। अहजया और योराम के बीच संधि थी और इनके बीच इस समय पारिवारिक संबंध भी थे। अध्याय 9 पद 22 से लेकर 24 तक। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहां? तब योराम रास फेर के और अहजया से ये कहकर कि हे अहजया, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखंडों के बीच ऐसा तीर मारा कि वो उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वो अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब उन्होंने अहजया का पीछा करके उसको घायल किया। घायल अहजया मगिदो शहर चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग यहूदा से मगिदो आए और उसको यरूशलेम ले गए और उसे दाऊद के कब्रिस्तान में पितरों के साथ मिट्टी दिया। तब येहू इज़राइल को गया जहां इजबेल अभी भी जीवित थी। वो आहाब की दुष्ट पत्नी थी जिसने इज़राइल को बाल की पूजा में धकेला। इसने ही इज़राइल के बाल की उपासना की शुरुआत करवाई। इजबेल ये जानकर कि येहू आ रहा है, उसने कहा, क्या जिम्री कुशल से है जिसने अपने स्वामी को घात किया? वो खिड़की से बाहर देख रही थी, वास्तव में उसने अपना मुंह रंग लिया था, बालों को बांधकर ऊपर बांधा था और उसने व्यंग किया, क्या जिम्री कुशल से है जिसने अपने स्वामी की हत्या की? उसने अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला। येहू ने वहां पहुंचकर कहा, क्या यहां मेरा कोई है? वहां तीन खोजे थे जिन्होंने अपने सिर निकालकर कहा, हम हैं तेरे लिए। उसने कहा, तो स्त्री को बाहर फेंक दो। इसलिए उन्होंने इजबेल को बाहर फेंक दिया और वो गिरकर मर गई। उसका खून दीवार और घोड़े पर छिटक कर गिरा। उसने घोड़े के पांव तले उसे कुचल दिया और फिर वो घर के अंदर जा बैठा और खाने पीने लगा। उसने कहा, तुम में से कुछ लोग जाकर उसे गाड़ दो। अध्याय 9 पद 35। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया, क्योंकि कुत्तों ने इजबेल को सड़क पर खा लिया था। ये एलिया की भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो उसने इजबेल के विरुद्ध की थी कि कुत्ते तुझे इज़राइल की सड़कों पर खा जाएंगे। इस तरह इस दुष्ट स्त्री के जीवन का अंत हुआ। इसे ऐसा लगता है कि दुष्टता में स्त्रियां पुरुष से अधिक गहरी उतर जाती हैं। मैं समझता हूं कि इसका कारण है कि स्त्रियों के पास भावुक वाणी होती है। मैं विश्वास करता हूं कि स्त्री पुरुष से अधिक ऊंचाई तक जा सकती है। उनके पास आनंद और उत्तेजना के अनुभव की बड़ी क्षमता है। उसकी भावुकता की सीमा पुरुष की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। एक पुरुष की भावनाएं कोमल नहीं होती है, उसकी भावनाएं संकीर्ण होती है। वो स्त्री की तरह भावनाओं की ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता, और एक स्त्री जब गिरती है तो वो बहुत नीचे तक गिर सकती है। इजबेल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्त्री जो निस्तम स्तर तक गई, और निश्चय ही यदि आप इतिहास में देखें तो जो स्त्री भ्रष्ट हो गई वो क्रूरता की हद पार कर गई। ऐसी बातें जो आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो कितना गिर सकती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में थुअतीरा की कलीसिया में मूर्ति पूजा के लिए इजबेल की उपमा दी गई है। इसलिए परमेश्वर थुअतीरा की कलीसिया को कहता है, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 20 से 22 पद, तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो व्यभिचार में मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे बड़े क्लेश में डाले जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कलीसिया बड़े महाक्लेश से गुजरेगी, हां पर कुछ भाग अर्थात कलीसिया जो इजबेल की पद्धति पर चलती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि कलीसिया बड़े क्लेश से गुजरेगी तो वे स्वयं को इजबेल के साथ अर्थात स्वयं को व्यभिचार से जोड़ते हैं। मैं तो अपने आप को कलीसिया के उस भाग से जोड़ना नहीं चाहता पर मैं स्वयं को फिलाडेल्फिया की कलीसिया से जोड़ता हूं। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 10वीं पद, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परंतु परमेश्वर की चेतावनी है क्योंकि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है जो मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। पुराने नियम की इस भ्रष्ट स्त्री ने मूर्ति पूजा आरंभ की और परमेश्वर के लोगों इसराइलियों से बाल की उपासना करवाई। प्रभु चर्च में मूर्तियों की आराधना को भी इसी के समान मानता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो मनुष्य वचन को पढ़ता है और बाइबल पर विश्वास करता है चर्च में मूर्तियां कैसे स्थापित कर सकता है, चाहे वो यीशु की, संतों की या और कोई भी मूर्ति ही क्यों ना हो। कुछ भी हो, व्यवस्था के अनुसार ये वर्जित है और यीशु स्वयं अपनी इस धारणा को पिरगमुन और थुअतीरा की कलीसिया के लिए व्यक्त करता है। मेक्सिको के कुछ भागों में कैथोलिक कलीसिया में आत्मिक जागृति आई है। बदलाव का एक सच्चा प्रमाण यह है कि उस क्षेत्र के बिशप ने वास्तव में नया जन्म पाया हुआ है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। उसने अपनी सीमा में आने वाले सभी चर्चों में से मूर्तियां निकलवा दी है और मैं रोमांच से भर गया क्योंकि चाहे मैं खुले विचारों वाला हूं मैं परमेश्वर के आराधना के स्थान में मूर्तियों को नहीं देख सकता क्योंकि पुराने और नए नियम में इसे सख्त मना किया गया है। इजबेल बहुत दुष्ट स्त्री थी जिसकी मौत और कुत्ते के द्वारा खाए जाने की भविष्यवाणी एलिया ने की थी वो येहू के हाथों पूरी हुई।